हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। सुबह के लगभग 11 बज रहे थे। रोबिन के घर पर वो व्हीलचेयर पर था, जबकि मेलिसा उसको तैयार करने में लगी थी। उसके आसपास एक दो सर्वेंट भी खड़े थे। जब रोबिन पूरी तरह तैयार हो गया, तब उसने इशारे से उन सबको जाने के लिए कहा, फॉर गॉड्स सेक, अब ऐसा कुछ मत करना जिसकी वजह से हमारा काम और डिले हो। फिलहाल के लिए भूल जाना विधिक ने तुम पर गोली चलाई थी। बहुत दिनों बाद हम कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। इसके बाद हमें किसी और सिटी को भी टारगेट करना है। मैं नहीं चाहती तुम्हारी और विधिक की पर्सनल राइवलरी का फर्क हमारे काम पर पड़े। मीटिंग में जाने से पहले मेलिसा ने रोबिन को लंबा चौड़ा भाषण सुना दिया। उसकी बात सुनकर रोबिन ने मुंह बनाया, हाँ, अगर बात मेरे भाई और काम की नहीं होती तो तुम्हें क्या लगता है अब तक वो आदमी जिंदा बचता क्या? उसने अपनी तरह मुझे भी व्हीलचेयर पर ला दिया है। रोबिन के चेहरे पर विधिक के लिए गुस्से के भाव थे। अपना बदला बाद में ले लेना, ये काम पूरा होने के बाद तुम उसे जान से मारने के अलावा बाकी कुछ भी कर सकते हो, मेलिसा ने कहा। रोबिन ने हामिद से हिलाया। वो दोनों विधिक के नए होटल में होने वाली मीटिंग में जा रहे थे। विधिक काफी हद तक रिकवर हो चुका था, इसलिए उसने काम पर लौटने का फैसला लिया। मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट मंगवा देती हूँ, मैं तैयार होने के लिए जा रही हूँ, मेलिसा ने कहा और वहाँ से चली गई। वहीं दूसरी तरफ विधिक भी मीटिंग में जाने के लिए पूरी तरह तैयार था। आज उसके घर पर उसका खास आदमी शाहिद आया हुआ था, जो उम्र में काफी कम था। वो लगभग 19 साल का था, जिसके चेहरे पर ठीक से दाढ़ी मूछ भी नहीं आई थी। भाई, मैं क्या बोलता हूँ, इस बार कुछ अलग ट्राई करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं, जिससे पूरा चंडीगढ़ शहर उलट कर रख जाएगा। एक एक को चुन चुन कर गोली से उड़ा देते हैं, या फिर ऐसा करते हैं किसी स्कूल में टेररिस्ट को भेजकर एक दो बच्चों को। शाहिद अपनी बात पूरी करता उससे पहले विधिक ने उसे इशारे से चुप रहने को कहा, सोच समझ कर बात करो, तुम मेरे घर पर हो और यहाँ मेरे अलावा कोई और भी मौजूद है, विधिक ने दबी आवाज में कहा। भाई, आपने बताया नहीं, भाभी मिल गई, मैं अभी उनसे मिलकर आता हूँ, शाहिद एक्साइटेड होकर वहाँ से जा रहा था। विधिक ने उसका शर्ट पकड़कर उसे पीछे खींचा, वो मेरी बस फ्रेंड है, उसके सामने सोच समझ कर बात करना और हो सके तो अपना मुंह बंद ही रखना, विधिक ने समझाया और बाहर की तरफ जाने लगा। उसका पैर काफी हद तक ठीक हो चुका था, वो अपने पैरों पर चल पा रहा था, लेकिन फिर भी उसे कभी कभी सहारे की जरूरत पड़ती थी। विधिक को बाहर देखकर शिवांगी ने कहा, हमने आपसे कितनी बार कहा है कि आप व्हीलचेयर यूज कर लिया करें, अगर आपको कुछ देर के लिए चलना है तो हमें बुला लेते, हम आपकी हेल्प कर देते, जानते हैं आप चलने के लिए एक्साइटेड हैं, लेकिन अभी आपके घाव पूरी तरह नहीं भरे हैं। शिवांगी को इस तरह विधिक की परवाह करते देख शाहिद ने विधिक से दबी आवाज में कहा, भाई, मैं तो कहता हूँ आप इसे ही मेरी भाभी बना दीजिए, देखिए ना, दिखने में कितनी सुंदर है, माशा अल्लाह आपकी कितनी परवाह भी कर रही है। मैंने तुमसे कहा था ना, अपना मुंह बंद रखना, विधिक ने उसे दबी आवाज में डांटा। उसके गुस्सा करने पर शाहिद ने अपने होठों पर अंगुली लगा ली। आप कहे जा रहे हैं, उसे तैयार हुआ देख शिवांगी ने पूछा। हाँ, मेरी एक मीटिंग है, मैंने अपना नया होटल बनवाया है, बस उसी को देखने जा रहा था, मुझे आने में टाइम लग सकता है, तुम कहो तो दीप्ति को यहाँ बुला दूँ। नहीं, उनकी जरूरत नहीं है, आज हमारा आराम करने का मन कर रहा है। लावण्या के साथ वो सब करने के बाद शिवांगी उसे वहाँ नहीं बुलाना चाहती थी, इसलिए उसने मना कर दिया। ठीक है, फिर भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना या नीचे होटल मैनेजर को। उसे सब समझाने के बाद विधिक शाहिद के सहारे नीचे जाने लगा। उसके जाते ही शिवांगी ने खुद से कहा, चलो देखते हैं टीम किस काम में लगी है। इतने दिनों तक विधिक के घर रहने के बाद दिव्याना को अच्छी तरह समझ आ गया था वहाँ किस तरह कैमरा सेट किया हुआ था। वो अपने कमरे में सोने के बहाने गई और फिर कमरे को अंदर से बंद कर लिया। दिव्याना ने खिड़की खोली और अपने सामान में से एक रस्सी निकाली, जो अक्सर ट्रैकिंग करने वाले लोग यूज करते थे। उसने उसका एक सिरा खिड़की के दरवाजे पर टांगा और रस्सी के सहारे उतरते हुए पूरे 5 फ्लोर नीचे आ गई। मेरे पास सिर्फ 2 घंटे का टाइम है, सबसे पहले एजेंसी ऑफिस जाकर सब पता करना होगा। शिवांगी ने खुद का चेहरा दुपट्टे से ढका और वहाँ से एजेंसी ऑफिस जाने के लिए निकल गई। आंशी के साथ जाने का सोचकर ही आंशी काफी एक्साइटेड हो रही थी। वो अपनी एक्साइटमेंट उसके सामने जाहिर नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो फॉर्मल जीन्स और शर्ट पहनकर ऑफिस पहुँची। ऑफिस के बाहर लगे कैमराज में आंशी को वहाँ आता देख लावण्या तुरंत अमन के केबिन से चली गई। आंशी ने अपने चेहरे के भावों को सामान्य किया और अमन के केबिन में पहुंची। मैं बस सिर्फ किसी काम के लिए आई हूँ, आगे से आप मुझे परेशान नहीं करोगे। अंदर आते ही आंशी ने कहा। अमन ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया। वो चुपचाप कुछ फाइल्स उठा रहा था। पता नहीं इसकी दिक्कत क्या है, जब देखो मुंह सड़ाकर रहता है। जब ऐसे एटीट्यूड ही दिखाना था तो मुझे बुलाया ही क्यों, आंशी ने अपने मन में कहा। अमन की चुप्पी उसे काफी खल रही थी। हमें वहाँ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अमन ने शांत लहजे में कहा। टाइम लगे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने घर पर बता कर आई हूँ कि ये मेरा आखिरी काम होने वाला है, उसके बाद मैं हमेशा के लिए फ्री हो जाऊंगी, आंशी ने मासूमियत से कहा। आंशी की बातें अमन के दिल को ठेस पहुँचा रही थी। वो मुश्किल से खुद को इस काम के लिए तैयार कर पाया था। उसने एक बार भी आंशी से नजरें नहीं मिलाई। रास्ता काफी लंबा है, हमें निकलना चाहिए, अमन ने फाइल्स उठाई और बाहर जाने लगा। आंशी भी उसके पीछे पीछे आ रही थी। वो उसके इस अजीब रवैये का कारण नहीं समझ पा रही थी। उसने अमन के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने के बारे में सोचा था, पर पूरे रास्ते उसने उससे कुछ नहीं कहा। वो लोग होटल पहुँचे तब तक शाम के 4 बज चुके थे। होटल में विधिक और उसके साथियों की मीटिंग हो रही थी। सिक्योरिटी गार्ड ने अमन और आंशी को बाहर ही रोक लिया। अंदर मीटिंग हो रही है, आप नहीं जा सकते सर, एक गार्ड ने कहा। मेरे मिस्टर राणा से बात हो चुकी है, इंटीरियर से रिलेटेड मीटिंग होने वाली है, आप चाहो तो उनसे बात कर सकते हो, अमन ने कहा। वो पहले ही विधिक से अपॉइंटमेंट ले चुका था। सिक्योरिटी गार्ड ने अंदर जाकर विधिक से बात की, तब उसने उन्हें अंदर आने की इजाज़त दे दी। मीटिंग के अलावा वहाँ कुछ हिस्से में काम भी चल रहा था। वहीं जब आंशी ने अमन के मुंह से मिस्टर राणा का नाम सुना तो उसके दिल की धड़कनें बढ़ गईं। इसने अभी मिस्टर राणा कहा, कहीं ये होटल भी विधिक का नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, ये एक कॉमन सरनेम है और किसी का भी हो सकता है, आंशी मन ही मन खुद को समझा रही थी। क्या सोच रही हो, हमें अंदर भी चलना है, अमन ने कहा। उसके आवाज़ सुनकर आंशी का ध्यान टूटा, वो उसके साथ अंदर जाने लगी। मुझे माफ कर देना, मैं अपने फर्ज के हाथों मजबूर हूँ, आई होप मैं अंदर सब संभाल सकूँ, अमन ने अपने मन में कहा। तभी उसके कान में लगे एक छोटे से माइक्रोफोन में जस की आवाज़ आई। ब्रो, मीटिंग होटल के 3rd फ्लोर पर हो रही है, वहाँ लिफ्ट का काम अभी बाकी है, आपको सीढ़ियाँ लेनी पड़ेंगी, अगर यही लड़की सबकी गर्लफ्रेंड हुई तो आप उसके साथ अंडर कंस्ट्रक्शन लिफ्ट के जरिए बाहर निकल सकते हैं, उसके अलावा हॉल का बैक साइड पीछे के गार्डन में खुलता है, वहाँ हमारी टीम ही मौजूद है।
विधिक का पैर भी अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ और रोबिन भी घायल है, उनके बाकी गुंडे तुम तक नहीं पहुंच पाएंगे, बस थोड़ी देर की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा, कोशिश करना तुम आंशी के साथ आओ और वो भी बैक गार्डन से, लावण्या ने उसकी हिम्मत बढ़ाई, वो सब एक दूसरे से कॉल के जरिए जुड़े हुए थे। उसकी आवाज़ सुनकर अमन को गुस्सा आया और उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अंदर जाते हुए वो चारों तरफ देख रहा था। वो दोनों अंदर पहुंचे। मिस्टर राणा ऊपर है, मैं अभी आता हूँ, तुम किसी भी चीज़ को मत छूना और ऊपर आने के बारे में तो सोचना भी मत, अमन ने आंशी को नीचे रुकने का कहा और खुद अकेले ही ऊपर चला गया। अमन के पास हिडन कैमरा भी था और वो उनकी मीटिंग में जो भी बातचीत हो रही थी उसे रिकॉर्ड करने के मकसद से अकेला ऊपर गया। ऊपर पहुंचकर वो किसी सेफ जगह देखकर वहां छुपकर उनकी बातें सुनने लगा, साथ ही वो कॉल के जरिए फिर से अपनी टीम से जुड़ गया। तो हो गया फाइनल, नेक्स्ट वीक यहां के सबसे बड़े हॉस्पिटल में कैंप लगने वाला है, वहां ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे और हमें उन्हें टारगेट करना है, विधिक गोला, इस बार मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, बॉम्ब बनाने वाली टीम को मैंने बोल दिया है, उन्हें प्लांट करने में भी दिक्कत नहीं होगी, हम वहाँ कैंप में अरेंजमेंट करने वाली टीम में अपने आदमी भेज देंगे, मेलिसा ने कहा। उनकी सारी बातें टीम ने सुन ली थीं और सबको ही उन पर गुस्सा आ रहा था। इनके कामों को देखते हुए ना तो इन पर और ना ही इनके चाहने वालों पर कोई दया करनी चाहिए, लावण्या ने गुस्से में कहा। उसका सीधा इशारा आंशी पर था। सब कुछ फाइनल होने के बाद उनकी मीटिंग खत्म हो गई और धीरे धीरे वहां से उनके आदमी जाने लगे। अब वहां रोबिन, मेलिसा, शाहिल और विधिक के अलावा और कोई नहीं था। रोबिन को व्हीलचेयर पर देखकर विधिक मुस्कुरा रहा था। कैसा लग रहा है तुम्हें इस आरामदायक कुर्सी पर, विधिक ने पूछा। बिल्कुल वैसा ही जैसा तुम्हें लगड़ा कर चलते हुए देख रहा है, रोबिन ने जवाब दिया। मैं थोड़े टाइम में पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा, पर लगता है तुम्हें थोड़ा और टाइम लगेगा, मुझसे भी ज्यादा टाइम। टाइम। खैर छोड़ो, मेरी और मीटिंग है। नीचे इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी का ओनर आया हुआ है। मुझे अपने होटल की इंटीरियर सबसे बेस्ट चाहिए। तुम दोनों आराम से खा पी कर जाना, मैंने सब कुछ अरेंज करवाया है। शाहिद, ध्यान रखना मेहमानों का, विधिक ने कहा और अमन से मीटिंग करने के लिए नीचे जाने लगा। उसके बाहर जाने की बात सुनकर अमन तुरंत वहां से निकल गया और जल्दी जल्दी चलते हुए नीचे गया। आंशी नीचे उसका वेट कर रही थी। कहाँ रह गए थे आप? जब मुझे अकेला ही छोड़ना था तो खुद भी अकेले ही आ जाते, मुझे लाने की क्या जरूरत थी? आंशी ने चिल्लाकर कहा तो अमन ने उसे चुप रहने का इशारा किया। हॉल में सामने की तरफ एक बड़ा सा शीशा लगा था। उसे देखते ही अमन के दिमाग में कुछ सूझा। तुम इस मीटिंग में नहीं आओगी, बस साइड में खड़े होकर इस मीटिंग को अटेंड करोगी। तो फिर आप मुझे यहाँ लेकर ही क्यों आए? आप पूरे रास्ते चुप थे। आप मुझसे बदला ले रहे हो ना, क्योंकि मैंने आपको आपके दिल की बात नहीं बताने दी। देखो, अभी कुछ मत पूछो, जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो, उसने हड़बड़ा कर जवाब दिया। आंशी उस पर अपना गुस्सा निकाल रही थी, लेकिन अमन के दिमाग में उस वक्त कुछ और ही चल रहा था। विधिक की चोट लगी थी, इसलिए वो जल्दी चलकर नहीं आ सकता था। अमन ने इस बात का फायदा उठाया। उसने आईने से काफी दूर आंशी को ऐसी जगह खड़ा किया जहां उसका अक्ष आईने में साफ नजर आ रहा था। टीम के बनाए प्लान के अनुसार अमन को विधिक को मीटिंग में बिजी रखना था, ताकि वो आंशी को देख भी लें तो ज्यादा रिएक्ट ना कर पाए। इस बीच उसकी टीम आंशी को वहां से सुरक्षित निकाल सकती थी। टीम के कुछ मेंबर्स होटल के अंदर भी मौजूद थे। अमन ने उसी टाइम प्लान को बदला और आंशी को आईने से काफी दूर खड़ा कर दिया। आंशी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अमन के कहने पर उसे सब करना पड़ रहा था। अमन भी वहीं उसके आसपास खड़ा हो गया। विधिक मीटिंग के लिए नीचे आया तो उसने नीचे किसी को नहीं देखा। डिसगस्टिंग, मैं इतनी मुश्किल से नीचे चलकर आया हूँ और यहाँ कोई नहीं है। ज्यादा दूर चलने की वजह से वो थक कर हॉल में लगे काउच पर बैठ गया। रोबिन और मेलिसा भी तब तक नीचे आ चुके थे। विधिक को अकेला देखकर रोबिन ने कहा, तुमने तो कहा था तुम्हारी कोई मीटिंग होने वाली है, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। हाँ, लगता है मुझे नीचे आने में काफी देर हो गई और वो यहाँ से चला गया होगा। कोई बात नहीं, अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। विधिक उनके साथ वहाँ से जाने को हुआ, तभी उसकी नज़र आईने में गई। विधिक ने आंशी को देख हिला था तो वहीं आंशी की नज़र भी उस पर चली गई थी। बटरफ्लाई, आंश, वो जोर से चिल्लाया। उसने मुड़कर देखा तो सामने आंशी खड़ी थी। उसे वहाँ देखकर आंशी के होश उड़ गए। विधिक को चलने में दिक्कत हो रही थी, फिर वो तेज कदमों से चलता हुआ उसके पास जाने की कोशिश कर रहा था।